This is an ABP Life podcast.
उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में 5 दिन से आग जो है वो धधक रही है। इनफैक्ट अब तो आबादी वाले क्षेत्र तक आग पहुंच गई है। लोगों को काफी दिक्कतें आ रही हैं, कहीं सांस लेने की दिक्कत हो रही है। लगातार NDRF की तरफ से वायुसेना ने भी भीमताल झील से पानी लेकर आसपास जो भवाली का एरिया है वहाँ का, मनोरा का जो एरिया है वहाँ आग बुझाने में हेल्प करी है। लगातार NDRF की टीम भी आग बुझाने में लगाई गई है। लेकिन सवाल यहाँ पर बहुत सारे उठ रहे हैं और उन्हीं के जवाब आपके माध्यम से आज के FII में हम ढूंढेंगे। ऑन ABP लाइव पॉडकास्ट मैं मानसी हूँ आपके साथ। हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं गुंजन मिश्रा जी जो कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं। वेलकम टू ABP लाइव पॉडकास्ट सर।
थैंक यू मैम।
सबसे पहला सवाल जो मैं लूंगी सर आपसे वो यही, हर साल ही ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं से हमें ये सुनने को मिलता है कि इस एरिया के जंगलों में आग लग गई है। उत्तराखंड में जो इस वक्त नैनीताल में जंगलों में जो आग लगी है उसके पीछे के क्या कारण है, और पिछले सालों की अगर हम तुलना देखें तो ये 5 गुना बढ़ी है आगजनी, तो इसके भी कारण आपसे जानना चाहेंगे।
आज देखिए मैम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आग की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो काफी हो चुकी है। उसका मेन जो रीजन है मैम, 3-4 रीजन है, उसमें हम ये कह सकते हैं, एक तो जैसे फसलों के जो अवशेष रह जाते हैं खेतों में उनको किसान लोग जला देते हैं, तो उनसे चिंगारी वगैरह उड़ के जंगल में चली जाती है और उससे आग वगैरह पकड़ लेती है।
पराली
भी कह सकते हैं उसको, और गेहूं का अवशेष भी कह सकते हैं, जो भी है, तो जो भी फसलों के अवशेष बचते हैं उसमें खेत को साफ करने के लिए उसमें आग लगा देते हैं। दूसरा कारण मैम, जो मेन जो रीजन है उसका कारण, दूसरा कारण ये है कि जो शिकारी होते हैं, जो शिकार करने के लिए जंगल में जाते हैं, वो कभी कभी जंगल में जानवरों को इकट्ठा करने के लिए या उनको पकड़ने के लिए जंगल में आग लगा देते हैं, तो ये भी एक कारण होता है। दूसरा तीसरा जो कारण है वो ये है कि ज्यादा तापमान हो जाना, जिसको आप क्लाइमेट चेंज भी कह सकते हैं, क्लाइमेट शिफ्टिंग भी कह सकते हैं, वेदर का कुछ पैटर्न चेंज होना, जैसे हवा की गति, हवा विंड की वेलोसिटी, विंड का डायरेक्शन वगैरह, ये भी, उसके साथ साथ विंड में ह्यूमिडिटी का कमी, आर्द्रता की कमी, हवा में आर्द्रता की कमी हो जाना, ये भी एक रीजन है। छठवां कारण ये भी हो सकता है कि जो मिट्टी होती है उसमें नमी की कमी हो जाती है, ज्यादा समय तक जो सूखा रहा जंगल, जैसे काफी समय तक बारिश नहीं हुई, एक काफी समय अंतराल के बाद बारिश होती है, तो वो जो सूखा जंगल होता है या मिट्टी में जो नमी की कमी होती है उसकी वजह से भी ये आग हमारी फैलती है। और तीसरा जो और जो आठवां कारण ये है कि जो लोग बात जो होते हैं, जैसे जानवर चराने वाले या फल वगैरह तोड़ने वाले या जैसे महुआ बीनने वाले या तेंदू पत्ता तोड़ने वाले, ये लोग क्या करते हैं कि जो सूखे पेड़ों की टहनियां या पत्ती वगैरह गिरी होती हैं उनको भी आग लगा देते हैं, ताकि वो एरिया साफ हो जाए और वहां पे वो आसानी से महुआ या फल वगैरह अपना चुन सकें। तो ये तो रीजन होते हैं मैम, 4-6 रीजन होते हैं आग के, 700 जंगलों में आग के कारण। और एक ये भी माना जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ गर्मियों में ही आग लगती है, गर्मियों में आग की घटनाएं ज्यादा होती हैं जंगलों में, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन एक ये भी देखने में आया है कि अब सर्दियों में भी आग लगने लगी है जंगलों में, और सर्दियों में आग लगने का कारण जो होता है वो मेन कारण होता है शिकारियों द्वारा जंगल में आग लगाना।
अच्छा, मैन मेड यानी कोई नेचुरल नहीं,
मैन मेड, हाँ मैन मेड। तो सर्दियों में जो वो होता कारण वो यही होता है। और एक बात और मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा कि जंगल में जो लगने वाली आग होती है वो 3 तरह की होती है
जी।
एक तो होती है सतही आग, जो सरफेस फायर कहते हैं इसको, और एक होती है जमीन की आग। जमीन की आग मतलब जो बिल्कुल थोड़ा बहुत जमीन के नीचे भी लग जाती है, जो पेड़ के जड़ वगैरह होती है उसमें भी लग जाती है, तो उसको भी जमीन की आग कह देते हैं। और चौथा होगा तीसरी होती है ऊपर के हिस्से की आग। ऊपर के हिस्से की आग ये सबसे ज्यादा खतरनाक आग होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें जब आग लगती है तो ये पूरे के पूरे पेड़ आग से जल के खाक हो जाते हैं, जल जाते हैं। तो ये तीन तरह की जंगलों की आग होती है और इसको समझना इसलिए जरूरी होता है मैम कि इन जो टाइप्स ऑफ फायर हैं इसके हिसाब से हम जो फायर की इंटेंसिटी है या जो फायर से नुकसान होता है जंगल की आग से जो नुकसान होता है उसकी उसका उसकी उसका अनुमान हम एक लगा सकते हैं। जैसे कि अभी यही बताया गया कि भारतीय वन सर्वेक्षण ने FCI ने कहा है कि भारत के 36% जंगल जो है वो अत्यधिक आग प्रवण है, मतलब बहुत ज्यादा आग के लिए प्रोन है। और यही कारण है कि विश्व बैंक ने अभी हाल ही में एक जारी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में जंगल की आग के कारण लगभग 1,176 करोड़ रुपए का नुकसान हर साल होता है, है ना। तो जो इतना नुकसान होता है तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो सिर्फ जंगल का नुकसान हुआ मैम, और इसके अलावा जो उपजाऊ मिट्टी है, जो उपजाऊ जमीन है, जो जल है, जो जीव जंतु हैं, जो बायोडाइवर्सिटी है, इनका भी नुकसान होता है, उस पर तो आकलन इसमें जोड़ा ही नहीं गया है। ये तो सिर्फ आग का नुकसान इसमें जोड़ा गया है कि हर साल 1,176 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और इसके अलावा ये भी देखिए आप कि जो लोग चाहे वो आदिवासी हैं या और भी जो लोग हैं जिनकी आजीविका सीधे सीधे वनों पर निर्भर है, जो औद्योगिक रोटी के लिए सीधे सीधे वनों पर निर्भर होते हैं, उनको भी प्रभाव पड़ता है मैम। और उनको प्रभाव पड़ता है तो वो रोजी रोजगार के लिए वो इधर उधर पलायन करते हैं, भागते हैं और देखते हैं। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो जंगल की आग है ये वो ये सिर्फ आर्थिक नुकसान ही नहीं देती, ये आपको सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय तीनों तरह के नुकसान देती है जंगल की आग। और जंगल की आग के जो मैंने प्रकार बताए तो उसमें जो ऊपरी वाली आग है वो सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, सफाई आग उतनी ज्यादा खतरनाक नहीं मानी जाती। इसके अलावा मैम एक बात और है कि हाल ही में जैसे अभी भारतीय वन सर्वेक्षण ने अगर ये देखा जाए पिछले दो महीने का आंकड़ा लिया जाए तो उनके हिसाब से ये कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो जंगल की आग लगने की घटना है वो लगभग 1,000 के आसपास हुई है।
अच्छा,
पिछले दो महीनों में
जी
उत्तराखंड में 1,000 के आसपास हैं, MP में 500 के आसपास हैं, कर्नाटक में 400 के आसपास हैं, महाराष्ट्र में भी इसी तरह से 450 के आसपास हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो जंगल की आग है, जंगल की आग हमारी सीधा सीधा ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है कि अगर जंगल की आग लगेगी तो होगा क्या कि पेड़ पौधे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, मतलब ऑक्सीजन चक्र से ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो साइकिल होती है उसकी जो एक्शन है वो तेज हो जाता है, और जब वो तेज हो जाता है तो ये फायर के लिए ये और ज्यादा बूस्टिंग का काम करता है, ये एक तरह से कैटालिस्ट का काम करता है। तो पेड़ पौधे खुद ब खुद एक कैटालिस्ट का काम करने लगते हैं फोटोसिंथेसिस एक्शन के मामले प्रोसेस के थ्रू। तो ये एक जंगल के नुकसान होता है, और जंगल की तीव्रता अगर आप देखें जंगल की आग की जो तीव्रता है या उसका नुकसान है वो तीन चीजों पर निर्भर करता है। एक तो वहां पर कितना आपका बायोमास फैला हुआ है, मतलब पेड़ पौधे पत्ती सूखे टहनी वगैरह ये सब कितना पड़ा हुआ है। फिर दूसरा जो रीजन हो जाता है मौसम, मौसम में तापमान, ह्यूमिडिटी और सोलर रेडिएशन, रेन, विंड वेलोसिटी, विंड डायरेक्शन। तीसरा जो हो जाता है ढलान, ऊंचाई, जैसे मान लीजिए कहीं पहाड़ है कहीं ढलान है तो वो ये भी एक रीजन हो जाता है। चौथा जो हो जाता है वो हो जाता है ह्यूमन रिक्रिएशन। ह्यूमन रिक्रिएशन जैसे कोई पिकनिक मनाने जा रहा है, अब पिकनिक मनाने गया उसने जंगल में आग लगाई और उसको बिना बुझाए हुए वहां से चले आए तो वो हवा जब चली और हवा जिस डायरेक्शन में हुई उस तरफ के जंगल में उसको वो आग पकड़ ली। तो ये तीन चीजों पर जो आपकी तीव्रता है या जो इंटेंसिटी है इन तीन चार चीजों पर निर्भर करती है। और अगर जंगल की आग से नुकसान अगर हम देखें तो सीधा सीधा नुकसान सबसे पहला नुकसान तो जैव विविधता का होता है, बायोडाइवर्सिटी का होता है। दूसरा नुकसान अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो हमारा पर्यटन को नुकसान होता है, पर्यटक जो होते हैं वो आपकी तरफ थोड़ी जाएंगे, है ना। और तीसरा नुकसान जो होता है वो हमारा प्रदूषण होता है, चाहे वो हवा का प्रदूषण हो या जल का प्रदूषण हो। पांचवा नुकसान जो हमारा होता है वो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलता है। जैसे अभी हाल ही में जो उत्तराखंड में आग लगी है, उससे लगभग ऐसा अध्ययन में पाया गया है कि उससे लगभग 0.2 मेगावाट कार्बन का उत्सर्जन हुआ है।
अच्छा,
0.2 मेगा टन कार्बन का उत्सर्जन हुआ है। तो ये जंगल की आग से नुकसान, उस तरह से चार पांच नुकसान भी हो जाते हैं। अब अगर जंगल की आग के समाधान हमको देखना है
जी,
तो समाधान सबसे पहली बात तो यही है इस पॉलिसी मेकर्स पर कि जंगल की आग को अभी तक हमने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत इसको प्राकृतिक खतरे की मान्यता ही नहीं दी गई है। जंगल की आग को प्राकृतिक खतरे की मान्यता ही नहीं दी गई है। दूसरा इसमें जंगल की आग रोकने के लिए जो धन आवंटित किया जाता है वो मेरे ख्याल से पूरा खर्च भी नहीं हो पाता और ऐसी वापस हो जाता है। तीसरा, जो अग्निशमन कर्मी हैं या वाहन हैं उनकी संख्या नहीं है ज्यादा, वो संख्या बढ़नी चाहिए। स्थानीय लोगों को जोड़ाओ, स्थानीय लोगों को हम जोड़ नहीं पाते अपने साथ, क्योंकि अभी जो हमारे फॉरेस्ट एक्ट वगैरह आए हैं उससे जो स्थानीय लोग जो जंगलों से प्यार से जुड़े रहते थे या जंगलों का संरक्षण करते थे अपनी रोजी रोटी के लिए, वो अब उससे दूर होते जा रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन करते जा रहे हैं, है ना। तो एक ये भी रीजन है। और पांचवा जो रीजन है वो ये है कि जंगल की आपको प्राथमिकता वाला मुद्दा बनाया ही नहीं गया है। आज तक मैंने तो नहीं सुना संसद में कभी जंगल की आग के ऊपर कोई बात हुई हो।
लोकसभा में राज्यसभा में इससे कोई मतलब सीरियसली ही नहीं लेता, कहने का
नहीं लिया गया, वही बता रहा हूँ। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि इसको प्राथमिकता दी जाए, इसको ये प्राथमिकता वाला मुद्दा बनाया जाए। जंगल की आग कोई छोटी मोटी आग नहीं है, जैसा कि मैंने इसको बताया कि करोड़ों रुपए का नुकसान होता है जंगल की आग से, और हर तरह का नुकसान होता है, सामाजिक आर्थिक पर्यावरण तीनों तरह के नुकसान होते हैं। तो ये तो हमारे जंगल की आग के एक देखा जाए वो एक ओवरऑल एक जो हमारी प्रतिक्रिया थी वो ये थी। लेकिन समाधान भी है, उपाय भी है, कारण भी है, सब हम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम निष्क्रिय बैठे हुए हैं। या निष्क्रिय कहने का मतलब हमारा ये है कि हम उतना एफर्ट नहीं करते जितना कि हमको करना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा कि अब ये आग जो जंगलों वाली आग है ये सर्दियों में भी लगने लगी है, तो इसकी तरफ भी हमको ध्यान देना चाहिए कि क्या कारण है कि हमारे यहाँ लाखों हेक्टेयर, और आपको मैं बता दूं कि ये सिर्फ उत्तराखंड हिमाचल कर्नाटक महाराष्ट्र की बात नहीं है। अभी हाल ही का मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि बुंदेलखंड में किसकूट एक छोटा सा जिला है जहाँ पे टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क है, वहाँ का एक छोटा सा जंगल वहाँ पे आग धड़क रही है पिछले एक महीने से लगातार धड़क रही आग, जबकि ये अप्रैल का महीना है। होना ये चाहिए कि सबसे ज्यादा जो आग की घटनाएं थी वो मई के महीने में सुनी जाती थी, क्योंकि उसी समय ही तापमान वगैरह बढ़ता है, टेम्परेचर हाई होता है। तो ये सब रीजन हमको इन सब चीजों पर ध्यान देना होगा, और इसके लिए हमको प्रॉपर उपाय करने होंगे और प्रॉपर सॉल्यूशन लिखने होंगे, वैज्ञानिक तरीके ढूंढने होंगे, तभी हम कुछ इसको कंट्रोल करने में सक्षम हो पाएंगे।
बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर योर नॉलेज एंड फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू मैम, वेलकम वेलकम।
This is an ABP Life podcast.